ஓமக்யானதிமிரந்தஸ்யஜானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோஹிஷ்டம் ஸ்தாபிதாம் பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கீ ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி வ்ருஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதருஹ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனிப்யோ வைஷ்ணவிப்யோ நமோ நமஹ. ஹரிர் நாம ஹரிர் நாம ஹரிர் நாமைவ கேவலம் கலௌ நாஸ்தைவ 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 கதிரன்யதா. நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத்ருஷே நமஹ. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமினி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷாத்ய தேசதாரிணே. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர் ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்தவிந்த். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரி ராம ஹரி ராம 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 ஹரே ஹரே. சாது சங்கோத்சவ் அச்சா நாம வர்ஷமே சம்மிலித் ஹோனே வாலே சபி வக்தா ஓர் ஸ்ரோதாவும் கே ஹம் ஆபாரி ஹை. படா பிரசன்னதா கா விஷய ஹை ஆப்கா யஹாம் ஹோனா ஹி பிரசன்னதா கா விஷய ஓர் யஹாம் கே ஜோ விஷய ஹை ஜோ விஷய வாஸ்னா ஸே ரஹித் ஹை श्रद्धा से प्रेम ये विषय हमको आनंद देंगे. विषय आनंद के सागर में हम लोग गोते लगाएंगे. भक्ति को प्राप्त करने का பிரயாஸ் உத்யமேன மகாராஜ் உத்யமேன கோயிங் அவுட் ஆஃப் யுவர் வே அங்கிரேஜி மே கேத்தே. ராஸ்தே மே கோய் மில் ஹி ஜாதா ஹை கும்ப மேலே மே யா ஆஷாடி ஏகாதசி மே, லேகின் யா ந தோ கும்ப மேலா ஹை ந தோ ஆஷாடி ஏகாதசி ஹை. தோ ஆப்கா யஹாம் ஆனா யே உத்யம் ஹுவா, आपने प्रयास किया. और फिर वीकेंड पर कोई आ सकता है, सैटरडे संडे है, आज क्या है ट्यूसडे है, तो ये आपका उद्यम प्रशंसनीय है सराहनीय है. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी प्रभुपाद, इनका मिलन हुआ प्रयागराज में. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में रूप गोस्वामी और उनके भाई भ्राता नाम अनुपम, दोनों ने खूब दंडवत प्रणाम किए. दंतई तृणधरी, दांतों में तिनके, घास के तिनके धारण करके मैं अति नम्रता पूर्वक और चैतन्य महाप्रभु को संबोधित कर रहे थे, नमो महावदान्याय। वदान्य तो हमने कई देखे हैं, लेकिन आपकी वदान्यता तो आप महावदान, कितने दयालु उदार हो। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गंगा के तट पर रूप गोस्वामी प्रभुपाद को 10 दिवस अपना संग देते रहे और कई आदेश उपदेश किए, और उस संग का, उस उपदेश अमृत का पान जो कराए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उसी को रूप गोस्वामी प्रकाशित किए भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में। कुछ बिंदु दिए उन्होंने, उसका विस्तार व्यास बने रूप गोस्वामी, और भक्ति रसामृत सिंधु दिए, जिसको श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी में इसका अनुवाद किए, साइंस ऑफ भक्ति योग, भक्ति योग का शास्त्र भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ। तो उसी सिंधु का फिर एक बिंदु ही हम लोग यहां लेके बैठे हैं, ये, और ये बिंदु वैसे विशेष बिंदु है, कोई सूत्र है, कोई छोटा सा बाण ही है। परमाद्वैती महाराज कह रहे थे, आशा करते हैं कि ये छोटा सा ही बाण जो अलग अलग हमारे वक्ता इस मंच पर बैठ के आपको घायल करते जाएंगे और आप ऐसी चोट, आपको ऐसा घायल होना आपको पागल बना दे, अगर वो घायलता उसमें उससे कुछ उन्माद, कुछ भाव, कुछ प्रेम आप में अगर जग सकता है सदा के लिए, तो यहाँ आके आपने जो उद्यम किया, यहाँ के जो साधु संघ उत्सव में इस श्रद्धा से प्रेम तक का जो विषय है, इसके श्रवण में जो आए हो, इसकी इसका साफल्य इस प्रकार घायल होने में है। जो सोएंगे वो क्या खोएंगे, ऐसे बाणों को वो नहीं पाएंगे। आपको प्रार्थना करना हो मेरी तरफ भी तो आप सीना आप थोड़ा खोल के ही बैठो, और अपने नोटबुक भी खोल दो, जो भी बाण आपकी तरफ आता है उसको क्या करो, नोट करो, कैच करो, यथासंभव लिखो भी, फिर उस योग निद्रा से रक्षा भी होगी और आप की घायलता और आपका पागलपन। मैं तो पागल हो गया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वह मंत्र दिला, कैसे बाणों से आपने मुझे घायल किया, कि वह मंत्र दिला गोसाई कि बतारो बोल, जपीते जपीते मंत्र करी लो पागल। तो वह तो जप से कीर्तन से पागल हुए थे, या कोई श्रवण कीर्तन से अगर हम पागल बन सकते हैं तो ये महाप्रभु की विशेष कृपा। तो वही एक बिंदु जो है इसका जिक्र महाराज कर रहे थे, राधारमन महाराज इतनी लहरी और इतना श्लोक संख्या आप लिखे हो, वही है आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्ततो निष्ठा रुचिस्ततः आसक्तिस्ततो भावस्त तथा प्रेम क्या अभ्युदंचति साधकनम अयम प्रेम्णः पादु प्रादुर्भवे भवेत क्रमः। क्रम क्रम से प्रादुर्भाव उदय प्रेम्णः प्रेम का होगा। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? आदौ श्रद्धा। आदौ मतलब प्रारंभ में, शुभारंभ होगा श्रद्धा से, उसका परिणाम इसका फल स्वरूप क्या प्राप्त होगा? प्रेम प्राप्त होगा। इस कृष्ण प्रेम प्रदायते, इस कृष्ण प्रेम का प्रदान दान देने हेतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो इसी श्लोक को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ संकेत दिया होगा इसके संबंध में रूप गोस्वामी को प्रयागराज में, और भक्ति रसाम सिंधु में फिर इसका इस प्रकार श्लोक को भी लिखे, और कई आचार्यों ने इस पर अपने भाष्य लिखे हैं, जिसमें हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी है, जो एक समय हमारे संप्रदाय के क्या कहते हैं आश्रयदाता या और भी शब्द है ना, रक्षक हमारे एक समय। तो हुआ उन्होंने ग्रंथ लिखा माधुर्य कादंबिनी, जिसका नाम हम आज के प्रातःकालीन भागवत कक्षा के समय से सुन ही रहे हैं थोड़ा समय समय, माधुर्य कादंबिनी। भगवान की भगवत्ता का सार वैसे कई जन समझते ऐश्वर्य है, भगवान की भगवत्ता जो गॉड हुड है उसका सार उसका इसेंस क्या है? भगवान का ऐश्वर्य, ऐसे कईयों की मान्यता है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव समझते हैं भगवान की भगवत्ता का सार है, संकेत है माधुर्य। तो संसार भगवान को ईश्वर या परमेश्वर कहता है, हम माधुर्य मधुरता की भाषा में परिभाषा गौड़ीय वैष्णव करता है। इस माधुर्य ये माधुर्य कादंबिनी को ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उसका प्रदान किए। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य मधुरता की जो उज्ज्वलता है, यह उन्नत उज्ज्वल रसाम समर्पय तुम देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। चिराम चिरा बहुत समय के उपरांत महाप्रभु प्रकट हुए, और क्या किया उन्होंने? ये मधुर उज्ज्वल उन्नत रस को प्रदान किया। तो उसी माधुर्य की कादंबिनी, मेघ की माला, कई सारे मेघ, भाग्य का उदय हुआ उस जीव का जो मरुस्थान में रेगिस्तान में तापत्रय उसको जला रहे थे, दग्ध कर रहे थे। तो प्रशांत माता जी कहते ऐसी स्थिति में जीव क्या सोच सकता है कि वो कहाँ है, पानी कहाँ है, जल कहाँ है, ऐसा कुछ सोच ही रहा था क्या जल प्राप्त हो सकता है, क्या मुझे जीवन प्राप्त हो सकता है संजीवनी। तो पानी का नाम क्या है, जीवन भी एक पानी का नाम है, पानी को जीवन भी कहते हैं। लेकिन यहां केवल जीवन ही नहीं कहा, संजीवन कहा है। जीते तो कई है, कुत्ता भी जीता और बिल्ली भी जीती ही रहती है, लेकिन यहां केवल जीवन नहीं है, पानी पी के जीना है, यह संजीवनी की बात की है। तो जीव ने अपेक्षा की अंत में क्या पानी मिल सकता है, तो उसके बदले में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने पानी नहीं, मधुरता माधुर्य मधु की ही वर्षा की। और कुछ जैसे जो माली होता है ना पानी का, वो स्प्रिंकलर लेके थोड़ा कैसा थोड़ा थोड़ा डालता है और फिर जब मृग नक्षत्र होता है तो फिर वर्षा ही आ जाती है और पानी ही पानी, बाढ़ आ जाती है। तो वैसे ही किया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये माधुर्य कादंबिनी, मधुरता पूर्ण मधु भरी ये मेघमाला, और उसकी वर्षा की श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। संसार दावान ललीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। तो संसार दावा नल, वही विश्वंबर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनकी रचना है ये गुरुवाष्टकम। और वही फिर माधुर्य कादंबनी भी लिख रहे हैं और समझा रहे हैं कैसे संसार दावा नल में तप्त, इस संसार के तप्त कुंड में जो जल रहा है उसको श्री कृष्ण चैतन्य महा। तो यहाँ तो गुरु का महिमा गाया है, तो गुरु ही आते हैं जब दावान संसार दावान नल में, या जंगल को आग लगी है तो फिर वह क्या होता है, वो फायर फायर ब्रिगेड से काम नहीं होगा, या बाल्टी से या थूक लिया उसको बुझाने के लिए, वो बुझेगा थोड़े। उस वक्त तो वर्षा की आवश्यकता होगी। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे मधुर वर्षा माधुर्य कादंबनी की व्यवस्था करने वाले साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, जो संसार में कृष्ण भक्ति प्रेम का बाढ़ लाएंगे और उसमें ये भक्तों के मदद से ही होगा। तो इस माधुर्य कादंबिनी के प्रारंभ में जिसमें इन्हीं 8 सोपानों की चर्चा है, या इसी भक्ति रसामृत सिंधु की आदो श्रद्धा वाला ये जो श्लोक है उसी को व्याख्या जब विश्वनाथ चक्रवर्ती कर रहे हैं तो उन्होंने समझाया है। तो प्रारंभ में समझाते हैं कि ये जो भक्ति है, भक्ति भक्त से ही प्राप्त होती है, भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति कई उसके विशेषण बताए हैं। तो भक्ति का कारण, भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति भक्त से प्राप्त होती है, भक्ति अहैतुकी भक्ति। तो जब वर्षा होती है तो वर्षा भी जहां तहां सर्वत्र होती है, ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने वर्षा की। पात्र अपात्र नाही विचार, स्थान अस्थान नाही विचार। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब इस माधुर्य कादंबिनी के माध्यम से प्रेम की वर्षा कर रहे थे, संकीर्तन का बाढ़ उमड़ रहा था उनके कारण, तो वो सर्वत्र, कौन पात्र कौन अपात्र, कौन सा स्थान उचित कौन सा अनुचित, इसका विचार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने नहीं किया। तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ श्रील प्रभुपाद स्थापित किए, कहते कि मुख्य मात्र इसका उद्देश्य है ताकि संसार को साधु संघ प्राप्त हो, साधु का संघ प्राप्त हो। वैसे कई लोग उद्यम या प्रयास करके भारत नहीं पहुंचते, या भारत के लोग भी वृंदावन या गौड़ीय वैष्णव के पास नहीं जाते, तो प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रेरित किया और चैतन्य महाप्रभु के ही ये सेनापति, सेनापति भक्त, तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसी व्यवस्था की सारे संसार भर में साधु संघ उपलब्ध हो। जो साधु संघ उपलब्ध है तो साधु की संगति में ही, भक्त की संगति में क्या प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होती है। तो आने वाले अभी दो ढाई दिनों में ये हमें साधु संघ का भी एक के बाद एक साधु आपको अपना संग देंगे ताकि भक्ति आप में उदित होगी। तो साधु संघ के पहले क्या है, अदो श्रद्धा, अदो श्रद्धा, फिर साधु संघ, शुरुआत में है श्रद्धा। वैसे या ये जो भक्ति का शास्त्र, सचमुच ये शास्त्र है, साइंस है या टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जितना विस्तृत वर्णन हमारे आचार्यों ने किया है, श्रील व्यासदेव किए और उन्हीं की परंपरा में आने वाले आचार्य, फिर गौड़ीय वैष्णव आचार्य ने इतना गहराई में जाकर उसको समझाया है, विस्तृत व्यास बन के। तो आज हम भी व्यस्त रहते हैं, मरने के लिए हमारे पास भी समय कहाँ है, यहाँ तक कि सेमिनार की तैयारी के लिए भी समय नहीं होता है। तो आज ही जब मैं देख रहा था, दुर्दैवी की बात है, तो बड़ा ही क्वालिटीज ऑफ भक्ति एट डिफरेंट स्टेजेस। तो वैधी भक्ति, फिर रागानुग भक्ति, फिर भक्ति के छह अलग अलग लक्षण बताते हैं। पहले दो लक्षण कहते साधना भक्ति के अंतर्गत है, क्लेशाग्नि और शुभधा, शुभधा होना चाहिए, सुभद्रा लिखाया। फिर भाव भक्ति में सुदुर्लभा मोक्ष लघुकृत, तो और जो बचे हुए और दो लक्षण है उसको प्रेम भक्ति श्री कृष्ण आकर्षणी और सांद्रानंद, तो ये छह लक्षण है उसके भी विभाजन किया। पहले दो भक्ति के लक्षण साधना भक्ति के अंतर्गत, दूसरे दो भाव भक्ति के अंतर्गत और दूसरे दो प्रेम भक्ति के अंतर्गत। फिर पहले में जहाँ पहला जो भक्ति का लक्षण कहा क्लेशाग्नि, फिर वो कहते पांच प्रकार के क्लेश होते हैं, हम लोगों को ये क्लेश नाम भी पता नहीं होता है, लेकिन हमारे आचार्य केवल क्लेश कह के रुकते नहीं, फिर क्लेश कहते हैं क्लेश के भी पांच प्रकार है, फिर हरे के नाम देते हैं, हरे का लक्षण समझाते हैं। और भक्ति क्लेश क्लेशाग्नि मतलब क्लेश का नाश करने वाली, और क्लेश का नाश हुआ तभी तो क्या हुआ सांद्रानंद आनंद ही आनंद। सो शुरुआत है क्लेशाग्नि से और सांद्रानंद छठवा और अंतिम लक्षण कहा, तो उसका भी संबंध है, इससे मुक्त हो गए क्लेश अग्नि क्लेशाग्नि, तो फिर सांद्रान आनंद ही आनंद तो हुआ। तो मेरे अलावा और जो स्पीकर्स है थोड़े फ्री या प्रचारक है, हम कुछ थोड़े मैनेजर भी है, पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी ये मैनेजमेंट या और, लेकिन वो आध्यात्मिक तो है, यही जस्टिफिकेशन है, यही इसका कोई समाधान मान सकते हैं। तो अदो श्रद्धा, तो आशा करते कि हम भी कुछ मुक्त होके कुछ अध्ययन हो भी हम भी करें अपने स्वयं और औरों के कल्याण के लिए। तो शुरुआत में है श्रद्धा, आदौ श्रद्धा, श्रद्धा के भी दो प्रकार बताए हैं, एक है कोमल श्रद्धा रूप गोस्वामी समझाते, दूसरा क्या परिपक्व, क्या नाम उसका, एक प्रौढ़ ओके, जैसे प्रौढ़ व्यक्ति मतलब अभी ग्रोन अप। तो शुरुआत में भक्ति कोमल होती, जैसे पौधा कोमल होता है और फिर वो आगे चल के प्रौढ़ होता है, पक्व होता है। तो श्रद्धा को दो इस प्रकार के दो विभाजन किए, कोमल और प्रौढ़। वैसे प्रौढ़ श्रद्धा को ही ये जो सोपान है उसमें नाम आता है निष्ठा, प्रौढ़ श्रद्धा को ही कहा है निष्ठा। तो आदौ श्रद्धा तो ठीक है, शुरुआत तो हुई श्रद्धा से जो शुरुआत में कोमल होती है, लेकिन there's no end in itself, ये श्रद्धा से ही केवल हम गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकते या कोमल श्रद्धा से नहीं पहुंच सकते। तो कोमल श्रद्धा ही धीरे धीरे प्रौढ़ होती जाती रहती है, और प्रौढ़ श्रद्धा निष्ठा, फिर वहां से बचा हुआ जो हमारा प्रवास है आध्यात्मिक जीवन का, वो हमें प्रेरित करेगा या वहां से शक्ति मिलेगी उस स्तर से, उस निष्ठा के स्तर से। तो एक तो विषय हुआ श्रद्धा से प्रेम तक, दूसरा ये भी हम कभी कभी कहते हैं कि श्रद्धा से निष्ठा तक, ये भी एक हैफ वे मिड वे एक बीच तक तो हम पहुंच गए। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रवास है आध्यात्मिक जीवन का। तो श्रद्धा से निष्ठा तक कैसे पहुंचना है, अभी आगे के जो प्रवक्ता है वे कहेंगे आपको। साधु संग करना होगा, भजन क्रिया करनी होगी, और अनर्थों से जब आप मुक्त होंगे तो क्या होगा, निष्ठा बढ़ेगी। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आपकी जब निष्ठा बढ़ेगी तो फिर आपका भजन में और सुधार होगा। और फिर साधु संघ को भी आप उसका भी महात्म्य समझोगे, और कैसे साधु संघ लेना होता है इसके लिए भी आपसे विशेष प्रयास होगा जब आप निष्ठा के स्तर पर हो। तो जो कोमल भक्ति वाले जो भक्त होते हैं उनको शास्त्रों में कहा है कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठा भक्ति, मध्यमा भक्ति, उत्तमा भक्ति, और उसके फिर तीन प्रकार के अधिकारी भी है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यमा अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो ये अलग अलग प्रकार के अधिकारी श्रद्धा के अनुसार होते हैं। उसका भी मंत्र है बंगाली में चैतन्य चरितामृत में, सनातन गोस्वामी को कहे क्या चैतन्य महाप्रभु श्रद्धा अनुसारी, भागवत में भी उपदेशामृत में भी है। तो वह तो कनिष्ठ अधिकारी मतलब कोमल श्रद्धा वाला, श्रील प्रभुपाद कई जगह ऐसे कहते हैं, मतलब कनिष्ठ अधिकारी क्या? श्री राधा पंडरीनाथ की जय। तो केवल कोमल श्रद्धा की स्थिति में रहना खतरनाक है, कोई भी आके आपको आपके मन में परिवर्तन कर सकता है, कुछ मायावादी या कुछ भौतिकवादी या कोई आपका मित्र जो सिनेमा का प्रेमी हो, या घर वाले कोई व्यक्ति है, आप में श्रद्धा है लेकिन कोमल है। ये जो आया राम गया राम, ये जो स्थिति है, कब आया पता नहीं कब गया, ये कोमल स्थिति में ऐसा होता है, अनस्टेडीनेस, वही अस्थिरता। मतलब उसने साधु संग नहीं किया, मतलब क्या श्रवण नहीं किया, साथ ही साथ शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, अनर्थों से मुक्त नहीं हुआ, तो निष्ठावान नहीं बना। यह हमारे देश में हिंदुओं का बहुत धर्मांतर होता है, तो धर्मांतर उन्हीं का हो सकता है जो कोमल श्रद्धा वाले हैं। ऐसा संभव है कि परमाद्वैती महाराज को आके कोई उनके कान फूंक दे और उनका धर्मांतर हो गया, अरे कल हिंदू थे आज ईसाई बन गए। संभावना लगभग नहीं है नहीं है। ये उसको उसका धर्मांतर करा सकते हैं, ऐसी क्षमता रखते हैं। तो ये जो तो कोमल श्रद्धा के कारण कमजोरी रहती है, इसलिए प्रभुपाद पुनः कहते थे रिलीजन विदाउट फिलॉसफी क्या होता है? सेंटिमेंट होता है। रिलीजन मतलब फेथ, कुछ श्रद्धा तो है लेकिन क्या नहीं है? फिलॉसफी नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, मतलब वो साधु संग नहीं किया, भजन क्रिया भी नहीं की, ज्ञान का विज्ञान में रूपांतर नहीं हुआ। तो ऐसे तो वो कोमल ही रहेगा या कमजोर रहेगा या मनोधर्मी रहेगा, मेंटल रहेगा, उसकी बुद्धि अभी स्थिर नहीं हुई, मति धी धिया जो है स्थित धीर मुनिर उच्चते, उसकी धिया बुद्धि स्थिर नहीं है। क्यों? उसने श्रवण नहीं किया, उसने अध्ययन नहीं किया और फिर मनन भी नहीं किया, जो बातें पढ़ी है सुनी है। हम लोग जाते जाते तो न तो पढ़ सकते हैं न तो अकेले है तो सुन भी नहीं सकते। कुछ भक्त वैसे सुनते रहते आजकल, लेकिन हम चिंतन जरूर कर सकते हैं सब स्थानों पर, बाथरूम में भी। कोई रोक सकता है क्या? तो टॉप मोस्ट भक्ति है। आप चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, इसके लिए कोई अलग से समय चाहिए क्या? बस राइड है, ट्रेन राइड है, तो जो सुना है पढ़ा है, चिंतन कर रहे हो मनन कर रहे हो तो स्थिर हो जाएंगे और उसी के साथ निष्ठा। तो निष्ठा और श्रद्धा का संबंध है। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। इसको समझ, इसको भी समझना है। नैष्ठिकी नाम की भक्ति प्राप्त होगी, ये सब भक्ति के सोपान है। आदो श्रद्धा से प्रेम तक ये सारे क्या है? भक्ति के सोपान है। जिसको श्रद्धा प्राप्त हुई मतलब भक्ति, साधु संग भक्ति, अनर्थ निवृत्ति से मुक्त हुआ भक्ति, ये सब तो हुआ अदो श्रद्धा। मैं क्या कह रहा था? भक्तिर भवती नैष्ठिकी। यस, तो भक्ति भवती, भक्ति होगी कैसी? निष्ठा नाम की भक्ति प्राप्त होगी। क्या करने से? नित्यम भागवत सेवया भक्तिर भवती नैष्ठिकी। और उसी के साथ उसी के प्रारंभ में क्या कहा है? रुद्यंतस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। उसके बाद नष्ट प्रायेश अभद्रेश। नष्ट प्रायेश मतलब अनर्थों से मुक्त हो रहा, साधु संग कर रहा है, मतलब भागवत नित्यम भागवत सेवया कैसी चले, साधु संग में चल रही है, उसी के साथ होगा क्या? नष्ट प्रायेश भद्रेशु, अभद्र का विनाश होगा, मतलब ही अनर्थ निवृत्ति होगी। भक्तिर भवती नैष्ठिकी निष्ठा, मतलब उसी सिद्धांत को उसी सूत्र को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ढंग से अलग अलग आचार्य अलग अलग शास्त्रों में समझाया है। बाद हम सभी से चाहते थे कि हम कनिष्ठ भक्त न रहे। लक्ष्य तो है उत्तम भक्त बनने का, लेकिन कम से कम कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम? मध्यम भक्त बने, मध्यमा भक्ति को प्राप्त करें। तो कनिष्ठ से मध्यम जाने के लिए श्रद्धा के बाद श्रद्धा हमको ला सकती है, श्रद्धा मतलब हाँ मेरा विश्वास है, लोग मेरा विश्वास है, मैं विश्वास करता हूँ गॉड एग्जिस्ट, भगवान है कहीं ना कहीं है, तो मतलब फेथ है लेकिन फिलॉसफी नहीं है, कुछ श्रद्धा है लेकिन ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, कुछ श्रद्धा है कुछ विश्वास है लेकिन ये ग्रंथ उन्होंने अपने जीवन का आधार नहीं बनाया है। तो व्यक्ति को हुआ श्रद्धा को, कोमल श्रद्धा को प्रौढ़ श्रद्धा में उसका रूपांतर करना है, उसको भाषांतरित या विकसित करना है। भगवद गीता में ये श्रद्धा शब्द कई स्थानों पर, कई बार भगवान बारंबार श्रद्धा की बात गीता में भी करते हैं और दृढ़ श्रद्धा में भी करते हैं, दृढ़ श्रद्धा की बात करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। तो ये दृढ़व्रत जो है, दृढ़व्रत उसने अभी शपथ ली है या उसने व्रत लिया है कि दृढ़व्रतः, मतलब श्रद्धा उसकी दृढ़ हुई है। फिर वो नमस्यन्तस्य माम नित्यम, माम भक्त्या नित्य उपा नित्य युक्ता उपासते, फिर नित्य वो भक्ति यह कर सकता है जब श्रद्धा दृढ़ श्रद्धा होगी। कोई प्रश्न है? Yes.
The Prabhupada define Adhyasraya as the analogy of you go to barber.
Barber, हाँ हाँ, yes. हम जब barber के पास जाते हैं, I don't know, same
thing. If you want, if we start speculating, or maybe the barber is crazy, he will cut my
head or neck.
Then we can progress.
Cannot get the head shaved.
Shaved, yes. And you give also the analogy of if you want to
working. Yes.
If you want to buy tickets, you go to Panama. Then if you start going to say, oh, maybe then we start also, we don't have Adoshra Dada.
Oh, I will reach the, my
then we will not also.
तो प्रभुपाद ने कुछ उदाहरण दिए, हम लोग भी कहते ही रहते हैं कि हम जब नाई के दुकान में जाते हैं, आपका विश्वास नाई में है लेकिन भगवान में नहीं है। नाई में क्या विश्वास है? आप कुर्सी में जाके बैठते हो, फिर आंख बंद करके बैठते हो, किस व्यक्ति के पास, जिस व्यक्ति के हाथ में क्या है, छुरी है। तो विश्वास क्या, विश्वास आपका कि मैं, मेरा ये गला नहीं काटेगा, इस दृढ़ विश्वास के साथ ये तो आप उस वक्त आप कोई बॉडीगार्ड या गनमैन वगैरह खड़ा नहीं करते वहां। ओ क्यों आप आए हो शेविंग के लिए, ये लोग क्यों हैं, ये बॉडीगार्ड है। तो हमारा विश्वास नाई में है, भगवान में नहीं है। तो तो होना चाहिए ऐसा हम लोग प्रचार के समय ऐसे उदाहरण का उपयोग करते हैं। माइक्रोफोन अभी तो चलता होगा।
प्रथम सोपान है, प्रारंभिक श्रद्धा की बात कही गई है, फिर श्रद्धा के विभाजन में वर्गीकरण है, कोमल श्रद्धा है, कठोर श्रद्धा है, और भी सात्विक श्रद्धा और राजसी तामसी श्रद्धा की बात है। एक प्रश्न उठता है कि किसी जीव में श्रद्धा का प्रारंभ कैसे होता है, वो कैसे लगता है कि श्रद्धा कैसे किसी में कम है किसी में ज्यादा है, कोमल श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा तो भजन करने से प्रौढ़ श्रद्धा बन जाती है, लेकिन श्रद्धा सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है कि हमें कम श्रद्धा है किसी में ज्यादा श्रद्धा है, श्रद्धा का जन्म उदय क्या कारण होता है, क्या होता है?
जैसे कि कहा कि कुछ मिनट पहले, श्रद्धा भी भक्ति है। श्रद्धा प्राप्त होना मतलब भक्ति प्राप्त हुई, केवल उस भक्ति की प्रारंभिक अवस्था ये कुछ हाथ में आई है, लेकिन भक्ति तो प्राप्त हुई। जो कर्म योगी बना है अगर वो रुकेगा नहीं तो आगे बढ़ता ही जाएगा और भक्ति योग को प्राप्त करेगा। तो जिसको कर्म योग प्राप्त है या ज्ञान योग लिंक्ड तो हुआ है, कुछ लोग बीच में अटक जाते हैं तो फिर उसी नाम से कर्म योगी ही हो गए, ये ज्ञान योगी, लेकिन वो आगे बढ़ते जाएंगे तो पूरे के पूरे भक्ति योगी बनेंगे। मतलब बिगिनिंग टू एंड मिलके सबको भी हम लोग भक्ति योग ही नाम दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे सोपान मिलके भक्ति के सोपान हैं, प्रेम प्राप्ति के सोपान हैं आदो, जिसमें शुरुआत में क्या है, श्रद्धा है। तो श्रद्धा भी भक्ति का ही अंग है। तो वैसे प्रश्न ये होना चाहिए, यह हो सकता है कि ये भक्ति प्राप्त कैसे होती है, या फिर उसमें कम अधिक, मतलब कोई आदो श्रद्धा के स्थिति में होता है, स्तर पर होता है, तो कोई साधु संघ के, तो कोई भजन क्रिया, कोई रुचि तक पहुंचा हुआ है, तो कम अधिक। ये भक्ति प्राप्त कैसे होती है, उसी की चर्चा खूब किया है ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, प्रातःकाल में भी चर्चा हो ही रही थी कि भक्ति कैसे स्वतंत्र है। तो उसमें मुख्य बात ये कहते कि भक्ति भक्त से प्राप्त होती है, और जब भक्त के मन में आया कि इसको भक्ति देनी है, भगवान उसके साक्षी ही रहते हैं और कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं या कोई रोकथाम नहीं होता है। उस भक्त को, दूसरे भक्त को, जीव को भक्ति देने के लिए भगवान कोई विरोध या रोकथाम नहीं होता है। तो भक्त को निमित्त बना के भगवान अपने भक्ति को और भक्तों के पास पहुंचाते हैं। तो वह ब्रह्मांड भ्रमीते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इसमें दो पार्टी के नाम लिए हैं, लगता कि दो व्यक्ति जिम्मेदार होने चाहिए। जीव ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है, ब्रह्मांड भ्रमित एक कौन, कोई एक, कोई 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 कौन भाग्यवान जीव, ओके, कोई भगवान ने किसी को भाग्यवान बनाया, कोई भाग्यवान जीव है, तो फिर भगवान पहले उसको अपने पास सीधे नहीं लाते, उसको ले जाते अपने भक्त के पास। तो आदो श्रद्धा के बाद साधु संघ ही तो है, आदो श्रद्धा के बाद साधु संघ है, मतलब गुरु संघ है, फिर वर्तम प्रदर्शक गुरु है या शिक्षा गुरु है या दीक्षा गुरु है। तो कुछ कुछ श्रद्धा हुई आदो श्रद्धा, तो नेक्स्ट साधु संघ है, तो गुरु से अभी उसको कृष्ण प्राप्ति या होनी है। तो वो गुरु वो साधु भक्ति लता बीज, भक्ति के बीज बीजारोपण करेगा और फिर आगे की प्रक्रिया है, सोपान है।
इस पर विवेचक मैं ऐसा समझ रहा हूँ, आप बता रहे कि किसी जीव में श्रद्धा का उदय या तो भगवान के भक्त कर सकते हैं तो स्वयं भगवान कर सकते हैं उनके द्वारा, हम यही ना समझ रहे हैं।
मैं नहीं कह रहा हूँ
ईश्वर एक हमारा हम लोग का एक मन में बात पर विचार आता है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो समदर्शी होते हैं, समूहम सर्व, और भगवान भी समदर्शी होते हैं। तो यदि भगवान अथवा उनके भक्त है, दो जीव हैं, किसी में श्रद्धा भक्ति देते हैं किसी को नहीं देते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो पार्शियल है, पक्षपात का दोष उन पर रहेगा। भगवान भी देना है तो सबको देना चाहिए, भगवान क्यों किसी जीव को कहे भक्त बनेगा, और यदि ऐसा करते हैं तो पार्शियलिटी का उन पर दोष लगेगा, तो पार्शियल है कैसे कह सकते हैं कि समूहम सर्व भगवान कहते मैं सही सम है, मेरा कोई द्वेष नहीं है, कोई किए नहीं है। और वही उन भक्तों में भी होता है, उनके तो ठीक है भक्त बना है तो सबको श्रद्धा दे दीजिए, और नहीं तो सबसे उदासीन है भक्त उनको। तो यदि ऐसा वो किसी को भक्ति देते हैं किसी को नहीं देते हैं तो उन पर पार्शियलिटी पक्षपात का दोष तो लगेगा।
उसके साथ भगवान या जीव की जीव को दिया हुआ जो अल्प स्वातंत्र है उसका उसका विचार है। जीव को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, इस मरु भूमि में क्यों मरा, यहाँ क्यों क्यों आया था, वहाँ भगवान के साथ था। अगर हम स्वीकार करते कि भगवान के साथ जीव था, गोलोक में था, वैकुंठ में था, तो वहाँ से आया था वह भगवान, उसको यहाँ आने दिए तो क्या कसूर भगवान का है कि वह कसूर जीव का बताया है। अगर कोई पतन हुआ है, भगवान से दूर जाता है, विमुख होता है, तो कसूर तो उस जीव का बताया है। तो वह फिर यहाँ पर संसार में आया तो वैसे समय समय पर सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड भी खाली हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप हरिदास ठाकुर मतलब अनन्नाथ की मेरा एक 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 ही वैष्णव पर्याप्त है, सारे ब्रह्मांड के जीवों को जितने जितने ब्रह्मांड में जीव उनको एक ही समय अपने धाम में भगवान के धाम में भेजने की क्षमता भगवान तो रखते ही है, एक जीव उसको भगवान इतनी शक्ति एम्पावरमेंट दे सकते हैं कि उस शक्ति से उसके भक्ति के शक्ति से सारे ब्रह्मांड के जीव मुक्त हो सकते हैं, और समय समय पर हो जाते हैं। 500 चैतन्य महाप्रभु जब थे, हरिदास ठाकुर थे, तो ब्रह्मांड खाली होने का समाचार है, और जीव जब यहां आए हैं तो वह उनका उन पर बंधन भी तो है, या उसका फिर पुनः शास्त्र है कूटस्थ प्रारब्ध किस स्थिति में है, कितने बीज है, अभी वो ऐसा भी टेक्निकल सब जानकारी बताई है। या हम लोग स्टेडी नहीं है, एक झट से क्यों भक्ति को हम लोग नहीं अपनाते, तो पहले जो हमारे कर्म का फल है जिसका हमने सुबह सुन दे किकिंग इन द फेस, वो किक मुझे कल क्यों नहीं मिली, आज क्यों मिली, तो हमने जो पाप का बीज है, पाप का बीज भी है, जो भक्ति लता बीज है तो पाप का बीज भी है, तो पहले कभी पाप का पाप किया उसका बीज अंकुरित आज हो रहा है, उसका फल आज मिल रहा है, और कुछ बीजों का फल कल मिलेगा, कुछ परसों मिलेगा, कुछ बुढ़ापे में मिलेगा, कुछ अगले एक जीवन के बाद, दस जीवनों के बाद, 100 लाइफ टाइम्स के बाद, सारा लाइंड अप है। तो इसका नाश इन सारे बीज जो है अलग अलग स्थिति में स्टॉक है, अभी अबाउट टू फ्रक्टिफाई, अंकुरित होने का समय है, ये सारे के सारे जलाए भी जा सकते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, अरे ढेर के ढेर जलाए जा सकते हैं। तो हर व्यक्ति का द पास्ट जो भूतकाल है वो अलग अलग है, इसीलिए उसका वर्तमान और भविष्य भी अलग अलग है। तो वो प्लस उन जो जो भाग्यवान बनने का जिनका समय आया है, आदो श्रद्धा को उदित करा के साधु संघ में उनको लाते हैं और उनको मुक्त भक्त बना के अपने धाम में बुलाते हैं भगवान। अंधेर है भगवान के दरबार में, नहीं नहीं उल्टा हो गया, देर है अंधेर नहीं है, तो कोई ज्यादा देरी नहीं है, 5-10 कल्प मतलब कोई ज्यादा समय नहीं है, भगवान की आयु इतनी लंबी है उसमें से, तो आगे पीछे का सवाल है, कोई आज जाएगा वैकुंठ, कोई आफ्टरनून में जाएगा, कोई रात को जाएगा, कोई कल सुबह जाएगा, तो यस मैंने कुछ हम लोग कॉमन सेंस भी से भी कहते हैं, कुछ शास्त्र से भी कहते हैं।
Two things, how the Shraddha comes to the living entity, and if it's Krishna who gives it, then it's unfair. क्योंकि किसी को देता है और कहीं दूसरे को कृष्ण को नहीं देता, तो दैट्स अनफेयर, राइट?
पार्शियलिटी।
सो वन एक्सप्लेनेशन दैट इज गिवन फॉर दिस इज दैट एक्चुअली इट इज नॉट, इट इज कृष्ण हु गिव्स द भक्ति, बट ही गिव्स इट ओनली व्हेन ही इज रिक्वेस्टेड। Otherwise, because he is not partial, he is not partial means that amongst all the non-devotees, those who are non-devotees, so he is not going to be partial to the non-devotees, that one non-devotee he will give and one non-devotee he will not give. That he does not do. He doesn't do that. He is not partial. But how we get the bhakti? We get the bhakti through the devotees of the Lord. And what happens to them is the devotee is carrying the bhakti in his heart. And due to bhakti, the devotee feels compassion for the suffering living entity. So he wants to enlighten them, he wants to give, he wants them to be saved, like you were saying, they are praying, Haridas, they are praying for the liberation of the living entity. So when a devotee prays in this way for the liberation of a living entity, then Krishna fulfills this desire. So in this way we can say that Krishna is not partial in the sense of his being a fault. He is partial, yes, but not amongst the non-devotees. He is partial to his devotee, and it is explained to be his glory, not a fault. That because he has a personal relationship of love with his devotee, and as we know, we will study that when we come to half prayer, then there is Sri Krishna Akarshini, on quality of Krishna prayer, Sri Krishna Akarshini. It attracts Krishna and it controls Krishna. So the advanced devotees, they pray. They have bhakti themselves, and out of bhakti they feel for the living entity. And so they pray to Krishna that, my dear Lord, you please bestow your mercy. And this is how actually, for example, the disciples, they get the mercy, because the guru is always praying for the disciples. He's praying for for the disciples. So this is how they get the mercy. So the living entity gets the mercy through the mercy, through the compassion of the Madhyamadikari. Madhyamadikari, it's not his a fault in him that he discriminates, it is his characteristic. The Madhyamadikari makes differences in his relationship. He sees the Lord, and then he sees the fallen living entities, he sees the 8 years at the different categories he makes, and he relates differently. So when he sees the fallen souls, he feels compassion, prays to the Lord, and because of his personal relationship of love with the Lord listens and bestows compassion. He bestows the bhakti. However, this is rather explaining, it's explaining how we get to some extent Shraddha, but it's especially explaining how we get to advance in devotional service. Otherwise, how the living entity gets Shraddha, one thing which is explained is it is through Agyata Sukriti, some unknown devotional service which is performed by the non-devotee. Because the Lord, and the Lord when he descends as an avatar, and as he descends as the Shastra, as the holy rivers, and as also through the devotees, there is a whole network to catch, it's a net to catch the living entities. And we fall into that net. Like you go to some holy place, and you are a big puppy, somebody pushes you and you fall into the Ganga. So this means that you will get some benefit from that, and there is, a partial uncovering of the material conditioning which occurs at that time. And so what happens is when somebody takes darshan, he didn't want to take darshan, but somehow, that's why there is procession of the deity. The pujaris take the deity out on the street and they do shobhayatra. At that time, so many people, they get darshan. They will not come to the temple, but by the mercy of the pujaris, they go around, then they get to see the deity. Or somebody eats prasada. Or somebody comes to somehow do some service for a devotee. So whatever it is, this is called Agnyata Sukriti, that we are coming in contact with the transcendental energy of the Lord, unknowingly, without willing. And this happens many, many times in the life of Brahmananda Bhumite, when we go around. And every time we have a Gyan Sukriti, it accumulates in the heart. And when there is enough of a Gyan Sukriti, then there is the living entity will feel attracted. When the Harinam party comes, somebody who has a sufficient amount of Agyat Sukriti, he will like it. Somebody who has no Agyat Sukriti, the Harinam party is going and he will say, who can he? He will go away. In fact, if he hears, he won't listen. But if he has Agyat Sukriti, then he will feel attracted. And by this attraction, we begin Sadhu Sangha. This is some explanation, the Agnyat Sukriti.
Very nice.
Transcendental network.
इसी से संदर्भ में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति के प्रेम प्राप्ति अष्ट सोपान है, हम भक्ति कृष्ण सिंधु का अध्याय के अनुसार अध्ययन करते हैं तो लगता है कि उसमें भी अलग सोपान का वर्णन है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। वो अभी लगता है कि अभी सोपान ही है, साधन भक्ति करते करते प्रेम भाव भक्ति, भाव भक्ति से प्रेम भक्ति है। लेकिन फिर एक सोपान की बात हम लोग उसमें लिखा गया है,
उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं, यह जो
उसी में
विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते भाव भक्ति में दो बताए, क्लेशाग्नि और
नहीं, हम उसकी बात आठ जो सोपान बताया जा रहा है, आदर्श साधु संग प्रेम तक, और एक है ना साधन भक्ति से भाव भक्ति, भाव भक्ति। अभी अध्याय के अनुसार जैसी रचना है भक्ति सामने सिंधु तो लगता है और साधन भक्ति करेंगे भाव भक्ति में आ जाएंगे, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में आ जाएंगे। ऐसा लगे पैरेलल एक और सीढ़ी है चढ़ने का आदर श्रद्धा तो साधु संग भजन किया, ये दोनों में कैसे एक साथ जोड़ेंगे, कहाँ से अष्ट सोपान और उधर एक थ्री सोपान, साधन भाव और प्रेम, इसको हम कैसे एक दूसरे से जोड़ें, एक दूसरे को कैसे समझ सकते।
आप उसको नहीं करें जो छह लक्षण जो कहें,
हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, छह करेक्टरिस्टिक है वो तो एक भक्ति जिसमें शुद्ध भक्ति के छह करेक्टरिस्टिक है, साधन भक्ति में दो डेवलप हो जाता है, भाव भक्ति में प्लस दो चार हो जाता है और प्रेम भक्ति में छह हो जाता है। प्रेम भक्ति में है तो छह वो करेक्टरिस्टिक हमारे चरित्र में आ जाएंगे, हम डेवलप से ये तो उसके सोपान, हम तो सोपान में सीढ़ी ही कहते हैं
ना, पायरी
पायरी, एक पायरी की हम अभी चर्चा इसका आदर श्रद्धा कर रहे हैं। और वो अभी लगता है कि तीन सीढ़ियाँ ही हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, तो हम लोग को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये दोनों सीढ़ियों अलग अलग अष्ट और
actually in the Adha Shraddha until Prem, he has given more information, different. There are two kinds of, there are two stages. First is Sadhana Bhakti, Shraddha Se Asakti Thak. This is Sadhana Bhakti. And Bhava of Prem, this is called Sadhya. The perfected state.
Sadhya.
So there are two kinds of bhakti. One is sadhana. Sadhana mein do, in the sadhana there are two kinds. Vaidhi or rag. Vaidhi bhakti, rag bhakti. That is in sadhana bhakti. And then in sadhya there is bhav and prem. So which one? So he has made many, there are many different stages he has analyzed, like the Shraddha, Sadhu Sangha, how it grows, the development, it's the development. But otherwise, there is Sadhana and Sadhya, two kinds. So the Sadhana means the practicing, that we don't have love for Krishna, we practice. Like Rupa Swami gives the example of the baby who is learning how to walk. In the child, human child, there is a propensity to walk. And when he practices, then it comes.
It is inside.
Yes, it is inside. So what is inside is the prem, bhav prem, that is inside. But in order to awaken sadhya, which is the perfected state, then we have to practice walking, which is this. We associate, we hear, and then we do the seva, diti seva, we do the smaranam, pada sevanam, archanam, vandanam. All this is sadhana bhakti. And one more thing.
Nitya siddha krishna prem, sadhya kabo noy.
Yes.
Sramanadi Shuddha Chitte Karaha Udaya. So all this is Sramanadi also, Shravan Kirtan, Smaran Vandan, as well as the stages of the previous Shraddha, Sadhu Sang, all this is all invoked by Shravan.
And one more thing is, yes, all the way to asakti, it is sadhan, which it means also that we serve. Of course, as I was saying this morning, it is the soul that is serving, but we are serving on the material platform, with our hands, our feet, our legs, our whatever, material body and mind, we are serving. But when we enter bhav, that is the beginning of the awakening of the Swarup. So, and we begin actually having transcendental perceptions of Prabhupada calls the transcendental television. We begin, not we, but the Goswamis, we begin having transcendental perceptions at the stage of bhava. He said that asakti, one gets glimpse of one's spiritual identity. Not just das, I am servant, but which servant? Which servant of the Lord? Which feelings I have for the Lord? Which relationship I have for the Lord? And which service I am doing? And there is, just as there is a Vedi sadhana, there is also a Bhav sadhana, which is guided by Guru beyond the material
vision,
which is training the spiritual in their transcendental eternal service.
Siddha
Deha. Siddha
Deha. Pranali.
So this is what we understand,
these stages
of how
they work. Aap deh sakte ho. Ek to chant Hare Krishna and be happy. And dusri aur ye sab is shuruaat mein humne kaha hai shastra hai, science hai, aur hamare acharya ne in sare shastron ka marm samajh ke uska vicharon ka manthan karke कि स्वयं ही उस स्थिति से गए हैं, श्रद्धा से, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, या भगवान ने कुछ प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते, ऐसे आचार्य के अविद्या का विनाश हुआ, क्या उनकी कृपा से हमारे अविद्या का विनाश होता है? तो बड़ा गहराई में जाके डिटेल में आचार्य गण इस पर चिंतन मनन करके उसकी रचना किए हैं, लिखे हैं। हम लोगों को ही, और जितने हम लोग समझेंगे इस विषय को उतने ही हम लोग निष्ठावान बनेंगे, उतने ही वैसे वहाँ से भी आगे जाना है। रुचि है या आसक्ति है, भाव है, प्रेम है, तो फुर्सत निकाल के आप बैठ के, हमारे पास बैठने के लिए समय नहीं होता है, बातें करनी है तो हम लोगों को सिट डाउन एंड टॉक हम लोग कहते हैं, देट इज गेट अप एंड फाइट हम लोग कहते हैं, मतलब बैठ के बात करते हैं, उठ के लड़ाई करते हैं। तो हम लोग राजसिकता के कारण कुछ उठ के ऐसे लड़ाई के मूड में ही होते हैं, तो बैठ के अगर हम समय निकाल के, जैसे अभी निकाले हुए हैं, इसको समझ सकते हैं। यही जो विषय है, श्रद्धा से प्रेम, आप वृंदावन जाओगे तो वहाँ सेमिनार्स होंगे, हम लोग एक विषय को घंटे डेढ़ घंटे में प्रश्नोत्तर के साथ उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हमारे VIHE MIHE के जो कोर्सेस होते हैं तो कहीं ना कई सप्ताह वो बिताते हैं, कई सप्ताह कई महीने। श्रद्धा टू प्रेम, हाउ मच टाइम यू स्पेंड? व्हेन श्रद्धा टू प्रेम यू पीपल टीच, ना यू विल नॉट टीच, बट व्हेन दे टीच हाउ मच टाइम डू दे स्पेंड? 2 months. Fifteen hours. Shraddha to Prem. तो 15 घंटे लगाते हैं हम भी कुछ ऐसा। Anyone else? So, we have someone. Probably never heard. Let him get a little sukriti. ये प्रशांत कह रहे थे कि जैसे आचार्य प्रार्थना करते हैं तो हमारे भक्ति तीर्थ महाराज भी अभी जो नहीं रहे, वे भी उन्होंने भी वसुदेव दत्त नाम के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रहे, जो प्रार्थना कर रहे थे कि सभी जीवों का संसार में, ब्रह्मांड में जितने सारे जीव है और उन सभी जीवों के जितने सारे कर्म है के जो भोगने होंगे कर्म के फल, तो प्रभु वो सारा कर्म मेरे सिर पर डाल दो, उनको मुक्त कर दो, क्लेशाग्नि सांद्रानंद स्थिति में उनको पहुंचा दो, मुझे सारा सभी का कष्ट मेरे मुझ पर ही डाल दो। तो वह हमारे भक्ति तीर्थ महाराज भी उस मूड को, उस भाव का साधना कहिए या अभ्यास कर रहे थे, या उसी प्रकार संसार के लोगों को जो कष्ट हो रहा है अब इस समय, वो भगवान मुझे दो, उनको मुक्त करो, उनको भक्त बनने दो। तो इस प्रकार के विचार जो भक्तों के, आचार्यों के मन में आते हैं, ये दया भाव, श्रद्धा भाव का ही आगे श्रद्धा की चर्चा, श्रद्धा का ही आगे दया भाव। तो ये दया तो वैसे भगवान की संपत्ति है, दया भगवान करुणा सिंधु है, दीन बंधु कृष्ण है, करुणा सिंधु। तो वो करुणा भगवान अपने भक्तों के दिल में हृदय में उदित करते हैं और फिर वे भक्त के देव जितने जीव जो को कष्ट हो रहा है वो मैं उसको संभाल लूँगा, उनको मुक्त करो। तो भक्ति तीर्थ महाराज के हम स्मरण कर रहे थे। तो कई कई फैक्टर्स है वैसे, ये कौन मुक्त कर रहा है हमको और कैसे मुक्त होते हैं, कहाँ कब से शुरुआत होती है, इसको समझाने के लिए भगवान गीता में कहे हैं गहना कर्मनो गति ही। कर्म की गति वैसे कैसी है? गहन है, बड़ी क्लिष्ट है, इंट्रिकेट है। किसका कहाँ से संबंध, किसका कहाँ किसके साथ संबंध, क्या मंडूक मुनि थे क्या? मंडूक मुनि को जब दंड दिया जा रहा था यमराज द्वारा, तो हमने तभी तो इस जीवन में तो ऐसा कुछ खराब काम तो नहीं किया जिसके लिए हमें इस प्रकार का दंड मिलना चाहिए। तो ऐसे जब उन्होंने कहा तो उनको याद दिलाई थी, हाँ नहीं आप तो भूल गए, लेकिन आप जब छोटे थे एक जीवन में तो आपने क्या किया था, घास का तिनका लेके आप एक चींटी को आपने आप उसको कष्ट दे रहे थे, कुछ परेशान कर रहे थे, उसको जख्मी कर रहे थे, तो उसका परिणाम आपको भाले और स्पीयर के साथ आपको अभी जख्मी किया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है। तो हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन और भी अथॉरिटीज है वो भूलती नहीं है। तो ये एक क्लिष्ट है। जयप्रदा का महाराज बता रहे थे, अभी बड़ौदा में चर्चा हो रही थी, एक गंगा के तट पर सर्प रेंग रहा था, तो बाज की अकील कोई पंछी आया और उसने उस सर्प को छीन लिया, उठा लिया, फिर आगे चल के उसकी मृत्यु होगी, उसको खाएगा वो पंछी। तो उस पंछी को उठाते उठाते ना उस सर्प को उठाते उठाते उस सर्प की पूंछ ने स्पर्श किया गंगा के जल में, और उस स्पर्श के साथ ही उस सर्प के शरीर में जो आत्मा थी उसने चतुर्भुज धारण करके भगवान के धाम लौटे। तो उस सर्प का शरीर तो वो पंछी के पैर में तो वो तो वहाँ वो रह गया, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त होके गंगा के केवल स्पर्श मात्र से वो मुक्त हो गया, भक्त हुआ। तो फिर हरेक का अगर हम ट्रेस आउट करें कहाँ से शुरुआत हुई, किसने किया इसको मुक्त, किसने भक्त बनाया, और ये कुछ वन स्ट्रोक में नहीं होता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा बहुनाम फिर जन्मनाम अंते फिर ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो व्यक्ति देवता का पुजारी हो जाता है, फिर साईं बाबा का पूजा, श्रद्धा तो है, हमसे कोई ऊंचा है ये श्रद्धा तो है, लेकिन फिर फंस जाता है। ऐसे उसके कई सारे जीवन बीत जाते हैं, फिर और फिर अंत में कुछ अज्ञात सुकृति उसकी हुई, कुछ कई दर्शन हुआ, कुछ मदद की, संकीर्तन पार्टी को पदयात्रा पार्टी आई तो पदयात्रा के जो बैल है उनको पानी पिलाया। कोई भक्ति तो नहीं मानेगा, लेकिन बड़ी अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट सेवा ही कुछ उन्होंने की। तो भगवान तो कृतज्ञ है, भगवान कृतज्ञ ग्रेटफुल भगवान भी है। तो ऐसी कोई भी उसी जीव से कोई सेवा हुई तो भगवान बराबर याद रखते हैं, फिर समय आने पर उसको उसका फल देते हैं। तो हमारा मुक्ति हो सकता है पाँच दस बीस पचास सौ जन्मों में थोड़ा थोड़ा कुछ हो ही रहा है, हम लोग ऊपर उठ रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी लाइफ टाइम का हिस्ट्री और फिर कौन सा क्या कारण, इसको श्रद्धा कैसे मिली, इसको भक्ति कहाँ से मिली, आदो श्रद्धा कैसे हुई, तो इसी को भी अचिंत्य शब्दों में भी कहा, ये थोड़ा अचिंत्य भी हमारे चिंतन के परे का कुछ तो हम लोग समझ सकते हैं, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि आचार्यों ने उस पर प्रकाश डाला हुआ है, कुछ समझाया हुआ है, ये क्योंकि ये कोई स्थूल बातें नहीं कि जिसको हम लोग कुछ फोटोग्राफ निकाले, कुछ नाप तोल ले, स्पर्श करे, ये तो ये कुछ दूसरा ही जगत है जिसको हम इस चर्म चक्षु से नहीं देखते, लेकिन जो देखते हैं या तो शास्त्र देखते हैं या आचार्य देखते हैं, उन्होंने कई बातें समझाए तो है, एक साथ ही अचिंत्य भी है और क्लिष्ट है या गहना कर्मनोगति भी है, ऐसे भी हम समझा सकते हैं, साथ ही साथ आचार्यों ने कुछ समझाया भी है, कुछ बहुत उस पर वर्णन भी किया हुआ है, तो जितना समझेंगे हम उतना कम ही है।
हरे कृष्ण महाराज।
हरे कृष्ण। हाँ नहीं वो चल नहीं रहा।
हर कोटी को
नहीं या तो
यात्रा करनी चाहिए। वो चार धाम कौन से हैं, उनकी महत्वपूर्ण उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ये कोई जरूरी है कि पहले इस धाम में जाना चाहिए, फिर इस धाम में जाना चाहिए, फिर जाना चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ।
इसका वर्णन लंच ब्रेक में आपको हमारे भक्त सुनाएंगे, अक्रूर प्रभु बताएंगे, आपके पास से बैठे हैं। चार धाम तो बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम रामेश्वर जगन्नाथपुरी और द्वारिका। ओके, हाँ तो उसका इम्पोर्टेंस भी अक्रूर प्रभु जी बताएंगे, और कौन से युग में कौन से धाम पूर्व या पश्चिम या दक्षिण या उत्तर में जाना चाहिए, तो ये जाने की इच्छा भी हुई है, तो ये श्रद्धा श्रद्धा कुछ उदित ऐसे सुनने से फिर और श्रद्धा और जगेगी, और श्रद्धा के साथ या हम जब धाम में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, साधु साधु संग प्राप्त होगा, तो साधु संग से कुछ भजन क्रिया सीखेंगे, अनर्थ निवृत्ति होगी, तो हम ऐसे इस प्रकार हम लाइन में लग जाते हैं, तो ये आए यहाँ सभा में बैठे हैं, तो यहाँ भी प्रश्न कुछ पूछा हमने, कुछ थोड़ा थोड़ा सा ही 30 सेकंड का जवाब दिया, और जवाब आप सुनोगे तो आपको और आगे प्रेरणा मिलेगी, फिर और आपका रास्ता, तो हम लोगों का भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, हम जिसको भूल गए हैं कहाँ से शुरुआत हुई, कौन से सेमिनार में हम लोग गए थे, क्या कौन से अज्ञात सुकृति का फल हमें ये प्राप्त हुआ है। प्रभुपाद भी इसका, राधा रमन महाराज प्रभुपाद भी कहा करते थे, जब एक कभी शिष्य ने पूछा कि या अज्ञात सुकृति का फल है या किसी पुण्य कार्य का फल परिणाम है कि हम लोग भक्ति में आ जाते हैं, वो जो कावर्ड बॉयज ग्वाल बाल है न जाने कौन सा कितना पुण्य की राशि पूंजी उन्होंने कमाई होगी जो अब भगवान के साथ नृत्य कर रहे हैं, तो शिष्य ने पूछा कि इस जीवन में तो हमने ऐसा कुछ किया ऐसा तो हमें याद नहीं है, अधिकतर हमारा पापमय ही जीवन रहा, तो न जाने क्यों हम भक्त बन गए, कृष्ण भक्त बन गए, तो श्रील प्रभुपाद ने उस वक्त कहा था कि मैं आपके गुड फॉर्चून का कारण मैं हूं, आप जो इस स्थिति में पहुंचे हो या आप जो भक्त बने हो, आप तो सोचते मैंने तो कुछ नहीं किया, कुछ पुण्य नहीं किया, तो सारा मांस भक्षण करता रहा, संसार के सारे पाप तो मैंने ही, ऐसा पाप नहीं जो मैंने नहीं किया होगा, तो भी अब भक्त बना हूं। तो प्रभुपाद ने कहा आपके उसका मैं भागीदारी हूं। फिर प्रभुपाद एक और जयप्रदा का महाराज बता रहे थे, वे मॉन्ट्रियल में या कई थे, हम लोग बात कर रहे थे कि हमको 100% ये श्रद्धा से पूरा ये जो प्रेम जो पूरा उदित होने के बाद ही क्या हम मुक्त होंगे, भगवान के धाम में जाएंगे, या आजकल कुछ भक्त शरीर छोड़ रहे हैं तो कभी कभी देखते हैं कि उस स्थिति पर पहुंचे हुए तो हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन हम चर्चा तो करते हैं कि हाँ ही वेंट बैक टू गॉडहेड, सी वेंट बैक टू गॉडहेड, तो ये बैक टू गॉडहेड जा रहे कि नहीं जा रहे हैं, ऐसा प्रश्न था। तो श्रील प्रभुपाद का ऐसा प्रश्न पूछा था कनाडा में, तो वह तो श्रील प्रभुपाद से पहले तो कह गया यस 100% यू हैव टू बी 100% कृष्ण कॉन्शियस, शत प्रतिशत, मतलब श्रद्धा से सारे सोपान चढ़ चढ़ के, फिर भाव और प्रेम ये सब 100%, देन यू गो बैक, फिर आप जा सकते हो। ये मन से या आसन से ये प्रभुपाद कहे, जयप्रदा का महाराज भी वहां थे। तो प्रभुपाद जब दीदी का दर्शन करके जा रहे थे, सीढ़ी उतर रहे थे, प्रभुपाद से इवन 90% विल डू, 90% भी से काम होगा। फिर प्रभुपाद और कुछ कदम आगे बढ़े, फिर रुके, इवन 80% इज ओके। मतलब जो शॉर्ट कमिंग है आचार्यों की प्रार्थना से, उनकी कृपा से, जो भी जैसे दो उंगली की बात है, एक तो उद्यम, एक तो प्रयास हुआ यशोदा का, और फिर जो भी अभाव रहा, त्रुटि रही, उसको फिल इन द गैप कर दिया, या दूसरी ओर से प्रभु भी आ गए, या भगवान को ठीक बांधना ही चाहती हो तो बांध दो, तुम्हारे प्रयास से ही मैं प्रसन्न हूं। तो वैसे भगवान अगर हमको हमें से टालम टाल तो कर दे, भगवान अगर भक्त, भगवान चाहते कि हम भक्त नहीं बने, कल्पना करो कि भगवान चाहते कि हम भक्त नहीं बने, तो कोई आगे बढ़ सकेंगे हम लोग? फिर फिनिश, भगवान अपने धाम में, उनका ठीक ठाक चल रहा है, रास डांस चल रहा है, और हम यहाँ राजस्थान के रेगिस्तान में, मरुभूमि में हमारा अंतिम संस्कार, हम भी जल रहे हैं और मर रहे हैं, तो ये सदा के लिए चलता रहता। लेकिन हम भक्त बने ये वैसे ये शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? भगवान के मन में, हम उनके पुत्र है, हम उनके अंश है, भगवान तो हम लोग भूले हैं, प्रभुपाद के हम लोग भूले कि नहीं, भगवान हमको नहीं भूलते हैं। तो भगवान को अधिक विरह की वेदना, जीव से भी अधिक विरह की व्यथा भगवान को, माता पिता जो हमारे हैं उनको होती है, इसीलिए कई कई उपाय एन केन प्रकार कुछ ढूंढते ही रहते हैं। निमित्त और किसी को बना देंगे, भक्त को निमित्त बनाएंगे, या ये निमित्त हुआ या वो निमित्त हुआ, या वो कौन कौन से निमित्त हम लोग पता लगवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आसान जवाब तो हम लोग 20 25 35 साल पहले ही सीखे हैं। ये सारे डिटेल पता है या नहीं है तो भी, तो लास्ट थिंग फर्स्ट हम लोग सीखे वो क्या है, गोविंदमादि पुरुषम या सर्व कारण कारणम। कृष्ण कैसे है, सब कारणों के कारण अगर भगवान है तो हमारी मुक्ति और भक्त बनने के कारण कौन, उसके कारण भगवान होने चाहिए। तो भगवान सामने स्वयं नहीं आ रहे, बीच में किसी को डाल रहे, भक्त को डाल रहे हैं। प्रमाण भ्रमिते गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज कह रहे हैं। तो अल्टीमेटली अंततो गत्वा तो सभी कारणों के कारण भगवान है और भगवान हमको चाहते हैं, हम भक्त बने ये चाहते हैं। तो वो जो फैक्टर है, मेन फैक्टर कॉज, तो भगवान, इसको हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते या उसको बाहर नहीं रख सकते। तो भगवान ही किसी को सेकेंडरी कॉज बनाते हैं हम लोग कह सकते हैं, या निमित्त बनाते हैं। वो निमित्त क्या क्या है, कई सारे निमित्त है, असंख्य निमित्त है, और ये निमित्त वो निमित्त वो निमित्त वो निमित्त वो निमित्त वो कारण वो कारण वो कारण, उसका ग्रैंड टोटल हो गया, वो कि अभी एलिजिबल हो गए, वो अधिकारी हो गया। चलो थोड़ा श्रद्धा को जगाते हैं, चलो अब इसको हुआ चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में पहुंचाते हैं, चलो अब इससे क्या करवाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसको ज्ञानवान, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, मेरी शरण में आता है तो कोई कहता हो ज्ञान, हमारे शरणागत का कारण ज्ञान हो गया क्या। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान, ज्ञानी हुआ, माम प्रपद्यते स महात्मा सुदुर्लभ। तो कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी भी कभी कभी लगता है, ज्ञान से फिर भक्ति प्राप्त हुई, भगवान की शरण प्राप्त हुई, तो किसका कहाँ से कनेक्शन है, किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, किसके कारण हम लोग यहाँ तक पहुँचे, इसका तो भगवान ही जाने। उसमें से कुछ जानकारी प्राप्त है इन जनरल, हर एक का इंडिविजुअल हिस्ट्री उसका चैप्टर खोलना और समझना तो महामुश्किल ही है, लेकिन इन जनरल क्या क्या होता है उसमें से कुछ बातें तो उसका ज्ञान, जैसे आचार्यों ने हम सभी के ज्ञान के लिए और उससे कुछ हम लोग उस सोपान पर आगे बढ़ने के लिए हमको दिए हैं, तो उसका अध्ययन करने से भी और हम लोग स्थिर होंगे, स्थिर मति होगी, कुछ टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे, कुछ विधि निषेध को समझेंगे, तो जिस पथ पर हम आए हैं श्रद्धापूर्वक और फिर आगे निष्ठापूर्वक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो वह हम लोग यहाँ अब रुकना था तो माइक्रोफोन लेके बैठे। लास्ट क्वेश्चन,
हरे कृष्ण गुरु महाराज, क्या जीव ने इतनी तीव्र इच्छा प्रकट की थी कि वो,
किसने,
जीव ने इतनी तीव्र इच्छा प्रकट की थी कि वो भौतिक जगत में आया, क्योंकि भगवान ने तो इतने आसानी से जीव को भौतिक जगत में जाने नहीं दिया होगा, क्योंकि वो दयावान है, इतना सुंदर है, तो क्या जीव ने इतनी तीव्र इच्छा प्रकट की थी या कुछ धाम में भी अपराध किए थे जिसके वश भौतिक जगत में आना पड़ा जीव को।
भगवान जीव को समझाया जाता है, भगवान जीव को गुलाम नहीं बनाना चाहते हर वक्त, ए स्टैंड अप, ए सिट डाउन, ए आउट, ए इन, ए फिर फ्रीडम कह रहा, कोई स्वतंत्रता रही नहीं। जरूर कोई समझाया बुझाया तो होगा, और फिर अंत में कहा होगा यथा इच्छसी तथा कुरु भाई। गीता भी समझाई भगवान ने, 18 अध्याय, इतना समय बिताया, घंटा डेढ़ घंटा, घंटे भर बात हुई। तो फिर भगवान ने कहा देखो मैंने इतना मेरा वैल्यूबल टाइम मैंने बिताया तुम्हारे साथ, अब उठाओ चलो, आई से गेट अप, उठाओ उसको गांडीव को, उठा लिया धनुष बाण, कहाँ बाण लो चलाओ पीछे, ये हाथ पीछे करो, पीछे करो, छोड़ दो बाण को छोड़ो, ये सब कुछ उन्होंने नहीं कहा। उसके पहले ये भी कहा कि अब देखो मैंने तो कहा है यथा इच्छसी तथा कुरु। तो ये जो फ्रीडम, ये जो स्वतंत्रता जीव को दी हुई है, इसका जीव कई बार उसका दुरुपयोग करता है।
तो अल्प स्वातंत्र दिया,
अल्प स्वातंत्र, हाँ,
भगवान तो पूर्ण, एकदम पूर्ण, उनके पास तो पूर्ण स्वातंत्र था, तो उन्होंने क्यों चाहा जीव को
अपनी अपनी पूरी शक्ति और युक्ति और सामर्थ्य और अधिकार भगवान अगर जीव पर सारा का सारा उपयोग करना चाहेंगे तो जीव हिल भी नहीं पाएगा, बंदी बन जाएगा। तो उसके साथ उतनी ताकत लगाते जितनी जीव में ताकत है। छोटे बच्चे के साथ जब लड़ते हम तो हम उतनी ताकत का प्रयोग करते हैं, बच्चे की जितनी ताकत, थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा पूरी के पूरे ताकत का उपयोग करेंगे तो फिर। तो ये विषय भी वैसे बड़ा चर्चा का विषय है। हाँ महाराज का था,
क्योंकि भगवान परम स्वतंत्र, इसलिए फिर से उस शक्ति और अधिकार का प्रयोग करके फिर से वापस जीव की जो थोड़ी सी स्वतंत्रता है उसको थोड़ी देर के लिए वो इंटरटेन करने देते हैं, और उसी थोड़ी सी स्वतंत्रता के कारण कई जन्मों तक वो भटकता रहता है, फिर अपनी स्वतंत्रता का भगवान प्रयोग करके वापस उसको आना चाहिए। जैसे बच्चा मेले में जाता है माता पिता के साथ, तो साथ साथ जाता रहता है, लेकिन कभी मिठाई की दुकान या कुछ खिलौने की दुकान देखता है तो सोचता है चलो थोड़ा सा देख लो कौन सा खिलौना है, और वो देखने में इतना मगन हो जाता है कि फिर वो सोचता है कि माता पिता थोड़ी दूर तो गया होंगे, अब तुरंत जाकर उनको पकड़ लेंगे। फिर तब तक माता पिता कहीं दूर चले जाते हैं, बच्चा फिर खोजता है, बाद में माता पिता उसे खोजने लगे, और अंत में माता पिता जब खोजते हैं तो बच्चा मतलब खोजा जाता है, संभव होता है, बच्चा स्वयं खोज नहीं पाता। ये स्वतंत्रता है,
अरे जैसे सर ज्ञान की बात तो श्रद्धावान व्यक्ति थे ज्ञान के बाद श्रद्धा है उसको ज्ञान मिलेगा और फिर भगवान के पास पहुंचाते हैं, तो बात भी इसके लिए अच्छा उदाहरण देते थे कि हम इधर आ गए तो सरकार का उदाहरण देते थे।
किसका?
सरकारी जेल और सरकार, तो सरकार चाहते हैं कि कोई चोरी नहीं करे, फिर पुलिस भी है, फिर भी लोग चोरी करते ही है, फिर जेल में डाल दिया जाता है। तो सरकार की तो व्यवस्था है, कोई जाए नहीं, कोई लफड़ा नहीं हो, पुलिस भी सब है, फिर भी लोग चोरी करते हैं, तो जेल तो है ही जाए गए।
ये संसार जेल है, कारागार, और कोई साक्षात्कार हो गए।